ये श्लोक है, यह उद्धव गीता के अंत में आ रहा है। उद्धव गीता 11वें स्कंद में 7वें अध्याय से 29वें अध्याय तक है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है। संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है, उसमें सबसे अधिक अध्याय 90 अध्याय जो दशम स्कंद में है, और उसके बाद में दो सबसे बड़े स्कंद जो है वह तृतीय अध्याय जिसमें कपिल उपाख्यान आता है, और 11वां अध्याय जिसमें ये उद्धव गीता आती है। तो जो उद्धव गीता है, भगवान का उपदेश साधारणतया उसी समय आता है जब उस उपदेश की बहुत जरूरत होती है। जब भौतिक जगत में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है तो हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो जैसे अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर थे और जब उन्होंने देखा किस तरह से मुझे हमें मेरे बुजुर्गों से, मेरे पितामह से, मेरे गुरु से युद्ध करना पड़ेगा, तो वे मोह में पड़ गए और तभी उनको उपदेश की जरूरत पड़ी। ठीक उसी तरह से अभी भगवान अपनी लीला को विराम देने वाले हैं, बहुत आध्यात्मिक जगत में पुनः लौटने वाले हैं। भगवान जो 125 साल तक भौतिक जगत में उन्होंने अपनी सुंदर लीला का प्रदर्शन किया, जो कलयुग है, कलयुग की शुरुआत 5000 साल पहले 3102 बीसी 3102 बीसी में शुरू हुई, उसके पहले 125 साल तक 3228 से 3102 तक भगवान इस भौतिक जगत में उन्होंने सुंदर लीला की, और अभी भगवान लौट के जाने वाले हैं। तो लौट के जाने वाले हैं, सब उद्धव को यह समझ में आ गया है कि भगवान जाने वाले हैं और भगवान का विरह उन्हें सहन नहीं होने वाला है, तो इसलिए भगवान को कुछ उपदेश की मांग करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु अगर आप जाने वाले हैं तो आप मुझे भी साथ में लेके जाओ। तो जब सारे कुरु वंश बड़े दिव्य पद्धति से विडंबना जिसमें बड़ी थी, किस तरह से उनका इस भौतिक जगत से गमन हो गया, उन सब में से केवल उद्धव अकेले रहे। पर उद्धव अकेले नहीं थे, उद्धव के साथ उनके जो परम आराध्य भगवान थे, उनके उपदेश थे। तो जो भगवद गीता का संदेश भगवान ने 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में दिया है, उसी को विस्तारित करके उसी भगवान ने उनके एक और अंतरंग पार्षद, हम उद्धव गीता और भगवद गीता में अनेक समानताएं देख सकते हैं। दोनों, जैसे मैं पहले बताया था, भौतिक जगत में कोई बहुत ही व्याकुल करने वाली, बहुत ही विचलित करने वाली परिस्थिति में ये उपदेश भगवान ने दिया। दोनों जो उपदेश थे वो उन्होंने अपने जो भक्त थे, जो साक्ष्य रस में थे, उनको उपदेश दिया, और दोनों उपदेशों के द्वारा उनके जो भक्त थे उनको वो जो परिस्थिति है उसको सामने जाने का शक्ति प्राप्त हुई। तो ये 23 अध्यायों में जो भगवद गीता का संदेश है उसको और बड़े विस्तार रूप से दिया है, और यह श्लोक लगभग अंतिम श्लोकों में से एक है भगवान के उपदेश का। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सब श्लोकों में यह श्लोक जो है यह एक चिंतामणि है, सब श्लोकों में परम श्रेष्ठ श्लोक है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में यह श्लोक उजागर रहता है उस व्यक्ति के हृदय से भगवान अधिक दूर नहीं है, भगवान बहुत ही करीब है। तो इस श्लोक का क्या महत्व है, यह सुंदर अध्याय है, आखिरी अध्याय है, भक्ति योग इसका नाम है। तो भगवान अपने सारे उद्धव गीता में अलग अलग जो आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग है उनके बारे में वर्णन करते हैं, कर्मकांड के बारे में वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान योग के बारे में वर्णन करते हैं। कर्मकांड जो है 23-24 अध्याय में वर्णन आता है, 21-22-23-24 में वर्णन आता है, फिर 28 अध्याय इसके पहला जो अध्याय है उसमें ज्ञान योग का वर्णन आता है, जो 15वां अध्याय उसमें अष्टांग योग है उसका वर्णन आता है, और फिर जो सांख्य है 23वें अध्याय में भौतिक जगत के अलग अलग जो तत्व है उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो जो भी वैदिक तत्व ज्ञान है उसका संक्षिप्त रूप में भगवान हमें समझाते हैं इस सारे संदेश में, पर अंत में भगवान बोलते हैं कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। और जब भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति अगर किसी को अपने जीवन में उतारनी है, तो उसके लिए यह जो श्लोक है यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों भगवान अभी विश्वाचार्य ठाकुर अपने दिव्य साक्षात्कार के द्वारा भगवान और उद्धव के मन में क्या चल रहा है उसको हमें उसकी झलक देते हैं। तो वह कहते हैं, उद्धव कहेगा कि हे प्रभु, आपके भक्त तो है वे कोई शास्त्रों के बहुत जटिल विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और तो फिर जो भौतिक जगत में बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहा जाता है? दो प्रकार के व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको बहुत बड़ा ज्ञान है और दूसरा है जो बहुत पैसा कमा लेता है। अगर कोई पैसा कमा लेता है तो लोग बहुत बुद्धिमान हो चाहिए, तो कैसे पैसा कमाया इसने? तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कभी कभी कि इफ यू आर इंटेलिजेंट शो मी योर पॉकेट। प्रभुपाद जी, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप आपकी जेब दिखाओ। प्रभुपाद जी पैसे के पीछे नहीं थे, पर प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जी कभी किसी कोई नया मंदिर बनाना है, कोई बुक कोई नया प्रोजेक्ट करना है, तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि आप मेरे पास पैसे मांगने मत आओ। आप अगर बुद्धिमान है तो आप खुद ऐसे योजनाएं बनाओ जिससे कि आप लक्ष्मी भगवान की सेवा में नियुक्त कर सके। तो प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि अगर कोई भक्त बुद्धिमान है तो वह बुद्धि शास्त्रों में निपुणता है या फिर जो भगवान की सेवा में लक्ष्मी है उसको समग्र करने में निपुणता है। तो भौतिक दृष्टि से अगर कोई बहुत शब्द में चापलता है उसकी, शब्द चापल्य है, या धन बहुत कमा लेता है, तो वह बुद्धिमान है। तो उद्धव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो देखता हूँ कि आपके भक्त कई बार शास्त्रों के विश्लेषण में इतने निपुण नहीं होते हैं और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, ज्यादा पैसे भी नहीं कमाते हैं। कुंती महारानी कहते हैं नमो अकिंचन वित्ताय, क्या आपका जो भक्त है वो अकिंचन होते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके भक्त सबसे बुद्धिमान है? तो भगवान बोलते हैं कि मान लीजिए कोई मेरे पास कोई अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति को एक रुपया देते हैं और एक रुपया देकर उससे एक करोड़ रुपया ले लेते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? बड़ा बुद्धिमान है, अच्छा सौदा कर लिया, एक रुपया दिया और एक करोड़ रुपए ले लिया। तो ऐसे कैसे सौदा कोई कर सकता है? तो भगवान कहते हैं अगर कोई ऐसा सौदा करता है तो वह बुद्धिमान है कि नहीं? उद्धव बोलते हाँ जरूर बुद्धिमान है। और फिर जो ऐसा एक करोड़ रुपए दे देता है एक रुपए के लिए, वो क्या है? वो उद्धव बोलते वो तो बुद्धू है। तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्त मुझे ऐसा बुद्धू बना लेते हैं। क्या मतलब? बोलते हैं कि उनका जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन इतना क्षणभंगुर है। खास करके चक्रवर्ती बात बताते हैं कि ये मृत्यु लोक भारत भूमि जो है उसमें जो जीवन है वो इतना अस्थाई है। कुछ सालों के लिए हम 100 साल तक कोई जीता नहीं है और उसके बीच भी अनेक बीमारियां होती है, कभी भी जीवन नष्ट हो सकता है। तो ये मृत्यु लोक में जो जीवन है वो अंध्रतेने मतलब न अस्तित्व होने के समान ही है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं यहाँ पे एक बम स्फोट हो गया, 100 लोग उधर गए, यहाँ पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो जो जीवन है बहुत सस्ता है, कहीं भी नष्ट हो सकता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा जो बहुत सस्ता क्षणभंगुर जीवन है वह मेरे भक्त मुझको अर्पण करते हैं और उसके बदले में मुझसे शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेते हैं। तो वो बुद्धिमान है कि नहीं बोलो? तो उद्धव जी बोलते हाँ बरूबर बहुत बुद्धिमान है। और फिर वो पूछते हैं कि तो फिर मैं बुद्धू हो गया? उद्धव बोलते नहीं नहीं हे प्रभु, आप बुद्धू नहीं है, आप उनसे भी अधिक बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि बोले कि ये आपकी परम कृपा है कि आप ऐसे नहीं है कि भक्त अपने बुद्धि के चापल्य से आपको फंसाते हैं, वास्तव में वो उनके प्रेम से आपके हृदय को जीत लेते हैं और आपकी ये महिमा है कि आप उनके प्रेम से जीते जाते हो। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में बोलते हैं उद्धव जी की यो स्वयं मृगैर सह गोचराणा कि हे प्रभु, आप तो यत पाद श्रीमत पीड़ित पीड़ा क्यों होते हैं कि आपके जो चरण की धूलि है वह तो शिव ब्रह्मा रमा लक्ष्मी ये सब आपके चरण की धूलि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके आकांक्षी रहते हैं, पर आप क्या करते हैं? आप तो इस भौतिक जगत में जो मृग है जानवर है उनके साथ आप खेलते हैं। तो चक्रवर्ती बात बताते हैं कि सह मृगई रोचय सह मृगई, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जब भौतिक जगत में आए थे तो वे वानरों के साथ लीला कर रहे थे, तो जो हनुमान सुग्रीव वाली अंगद उन सब के साथ वे लीला करते रोचयत सहमृगै। बोलते हैं कि वास्तव में अभी उद्धव गीता चल रही है, ये भागवतम का 11वां स्कंध है, तो वास्तव में यहाँ पे भगवान राम का उल्लेख नहीं हो रहा है, यहाँ पे भगवान कृष्ण का उल्लेख हो रहा है और कृष्ण के वृंदावन की लीला का उल्लेख हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे जब भगवान जंगल में जाते हैं तो वो जो गैया हैं उनके साथ खेलते हैं, ये रोचयत सहमृगै, गैयों के साथ खेलते हैं जब छोटे बालक होते हैं। तो भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है 8वें 9वें अध्याय में, कैसे कभी भगवान जो छोटी गैया है उनके पूंछ को पकड़ लेते हैं, और जब पूंछ को पकड़ लेते हैं तो गैया डर जाती है और गैया दौड़ने लगती है, वो लगता है कि किसने हमारा पूंछ पकड़ लिया, और जब दौड़ने लग जाते हैं तो छोटे कृष्ण है छोटे बलराम वो डर जाते हैं क्या हो रहा है, तो गैया के पूंछ को और पकड़ लेते हैं और पकड़ लेते हैं तो वो गैया और डर जाती है और तेजी से दौड़ने लगती है, और फिर सारे नंद महाराज के आंगन में इधर उधर दौड़ते हैं और फिर बाद में जो गैया डर जाती है वो पानी में कूद जाती है, पानी में जाती है तो भगवान भी कूद जाते हैं, और फिर सब यशोदा माई ये सब जो वहां पे वरिष्ठ स्त्री आए वो सब हंसते हैं और आनंद लेते हैं, यो रोज ये सहमृगै। तो अगर कोई ये दृश्य को देखेगा कि कोई छोटा बच्चा है वो गैया की पूंछ को पकड़ रहा है उसका खेल रहा है, तो कौन कल्पना कर सकता है कि ये व्यक्ति भगवान है, ये छोटा नटखट बालक है, पर यह भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा क्या है कि वे यद्यपि सर्वश्रेष्ठ है सर्वव्यापी है सर्वबुद्धिमान है, वे प्रेम के आदान प्रदान में ही आनंद लेते हैं, और इसलिए प्रेम के आदान प्रदान के लिए वो अपने प्रभुत्व अपने भगवत्व को ढक देते हैं अपनी योग माया के द्वारा। और साथ साथ वो कहते हैं कि सहमृगै रोचयत, वो कहते हैं कि जैसे भगवान छोटे बंदर थे, मृग मृग का अर्थ होता है ये गैया हो सकता है और ये बंदर भी हो सकता है, तो बंदरों के साथ भगवान लीला करते हैं वृंदावन में भी, बंदरों के साथ वो माखन चुराते हैं और उनको माखन खिलाते हैं। तो वो उद्धव कहते हैं कि ये जो मृग है उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने क्या तपस्या की है, कुछ भी नहीं किया पर वो किस तरह से ये भाग्य मिल रहा है उनको, वो आप क्योंकि उनमें भक्ति है और आप भक्ति से जीत जाते हैं, आपका हृदय भक्ति से पूरी तरह से जीता जाता है। तो जो ये सारा संवाद है इसका जो अंत है, जैसे भगवान भगवीता के अंत में सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज बोलते हैं कि जो कुछ भी सिखाया है वो सब भूल जाओ और तुम क्या करो मेरी भक्ति में लग जाओ, मेरी भक्ति ही तुम्हारा आश्रय है। तो ये सर्वधर्मान परित्यज है, ये कभी कभी जो भौतिकवादी लोग है भले ही धार्मिक हो उनको समझ में नहीं आता है धर्मों को कैसे त्याग कर सकते हैं। तो मैं एक कुछ स्मार्ट ब्राह्मण थे वो कुछ भगवद्गीता गा रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो उन्होंने वो श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य को परिवर्तित कर दिया है सर्व अधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं धर्म को कैसे त्याग करेंगे हम, पर वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि जो आपकी कल्पना है क्या धर्म है वो सब त्याग कर दो, आप मेरी शरण में आ जाओ माम एकम शरणम व्रज। ठीक उसी तरह से भगवान अनेक चीजों का वर्णन करते हैं उद्धव गीता में, पर अंत में बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपना जो छोटा सा जीवन है अनृतेनेह मतलब कितने साल तक हम जीने वाले हैं, कुछ समय तक, और अगर हम सारे भौतिक जगत का इतिहास देखते हैं तो कितने करोड़ों करोड़ों लोगों का जन्म हुआ है उनकी मृत्यु हुई है वह हम गणना भी नहीं कर सकते, तो उसमें से हम हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, पर हम देखेंगे विस्तार रूप से तो हमारा जीवन बहुत क्षणभंगुर है, पर अगर यह क्षणभंगुर जीवन हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। मर्तेण आपनोति मामृतम, कि मर्तेण ये जीवन का अंत होने वाला है पर क्षणभंगुर जीवन से हम शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, यह जो है भगवान की परम कृपा है। तो यह भक्त की महिमा है कि वह ऐसा सौदा कर लेता है भगवान से और छोटी सी चीज देकर बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी प्रोग्राम के लिए, आप कोई गाड़ी पे हो कार में हो और कोई भिखारी आता है ठक ठक, क्या चाहिए ये कार दे दो ना मुझे, क्या कार दे दो, हिम्मत कैसे हुई कार मांगने की एक रुपया दो रुपया मांग लो तो कार कैसे मांग सकते, हिम्मत कैसे हुई। तो जो भक्त है वो भिखारी है पर ऐसे भिखारी है वो क्या करते हैं, वो भगवान से जो भगवान की सबसे प्रिय चीज है वही मांग लेते हैं। भगवान से सबसे प्रिय की चीज क्या है, उनकी भक्ति है, तो वो भगवान से मांग लेते हैं। तो भगवान आसानी से देंगे नहीं, पर जब देते हैं तो भगवान उस भक्त के हृदय में बंद हो जाते हैं। इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं अपने चौराग्रगण्य अष्टकम में कि हे प्रभो, आप सबसे बड़े चोर हो। साधारण चोर पैसा लेके भाग जाता है, तो आप तो दो प्रकार से इन चोरों से बड़े चोर हो। कैसे दो प्रकार से है, एक तो है कि आपने सिर्फ पैसा नहीं लिया मेरा, आपने मेरा मन, इंद्रिया, जीवन, हृदय सब कुछ चुरा लिया। और दूसरा, कोई चोर है चोरी करने के बाद भाग जाएगा, आप भागे नहीं, आप यहीं पर रहे। तो आप ऐसे चोर हो, आपने इतनी बड़ी चोरी की है, तो मैं अभी आपको बड़ी सजा देने वाला हूं। क्या सजा देने वाले, तो आप भागे नहीं तो मैं अभी आपको पकड़ के मेरे हृदय में हमेशा के लिए बंद करूंगा। और वेद शास्त्र कहते हैं कि आप सर्वशक्तिशाली हो, मैं दिखा दूंगा कि आप सर्वशक्तिशाली नहीं हो, क्योंकि आप जो बड़े बड़े बंधनों को तोड़ सकते हैं, आप जो यमपाश का बंधन है जैसे अजामिल का तोड़ा, आप तोड़ सकते हैं, भवपाश का बंधन है आप तोड़ सकते हैं, बट भक्तिपाश का जो बंधन है आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं, इटर्निटी इंप्रिजनमेंट करने वाला हूं। मैं आपको जीवन नहीं, शाश्वत काल के लिए मेरे हृदय में बंद कर दूंगा। तो यह जो भक्त और भगवान है उनमें बड़े दिव्य स्तर पर आदान प्रदान होता है। और यह जो उद्धव गीता है उसके अंत में उद्धव जी बहुत सुंदर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे अर्जुन भगवान से कहते हैं करिष्ये वचनम तव, तो वैसे उद्धव जी क्या कहते हैं कि नमोस्तु, आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइए, नमोस्तुते महायोगी,
नमोस्तुते महायोगी
प्रपन्नम अनुषाधिमाम, प्रपन्नम अनुषाधिमाम यथा तच्चरणाम भोजे,
तच्चरणाम भोजे
रतिर्माम अनपाइनी,
रतिर्माम अनपाइनी।
तो उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभो, नमोस्तुते महायोगी, आप परम योगी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आता हूँ। अनुषाधिमाम, अनुषाधि मतलब मुझे आप उपदेश दीजिए। और किस प्रकार का उपदेश दीजिए, यथा तत् चरणाम भोजे, उस प्रकार का उपदेश जिससे कि आपके चरण कमल है, रतिर्माम अनपाइनी, जिससे कि आपके चरण कमलों के प्रति मेरी रति जो है, मेरी आसक्ति है और वृद्धि हो जाए। तो अगर हमें भगवान से कुछ मांगना है तो यही मांगना चाहिए कि हमें, हम ऐसा मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा मुझे आदेश दीजिए, ऐसे मेरे जीवन को आप नियोजित कीजिए जिससे कि मेरे आपके प्रति आकर्षण बढ़ जाए। क्योंकि उद्धव जी जान रहे हैं कि अभी प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, पर अभी ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, वो चले जाने वाले हैं। तो चक्रवर्ती बात बताते हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं अलग अलग जगह जाके मैंने मेरा दर्शन दिया। मिथिला में शुद्धदेव और बहुलाश्व थे, वो राजा और ब्राह्मण थे, वो मेरे भक्त थे, उनको भी दर्शन चाहिए था तो मैंने उनका दर्शन दिया। वैकुंठ में महाविष्णु को मेरा दर्शन चाहिए था, मैंने उनको भी दर्शन दिया। इंद्र को भी वास्तव में दर्शन चाहिए था, उसने बड़ा नटखट किया कुछ, मैंने उसको भी आके दर्शन दे दिया। पर अभी तक जो बद्रिकाश्रम में नरनारायण ऋषि और आदि ऋषि है वो मेरा दर्शन चाहते हैं, पर अभी मेरे 125 साल खत्म हो गए हैं और मैं भगवान भी शेड्यूल को पालन करते हैं, तो मैं अभी ज्यादा यहाँ पे रहना नहीं चाहता, मैं आध्यात्मिक जगत लौट जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं अभी बद्रिकाश्रम नहीं जा सकता, पर फिर भी मैं जो ऋषि मुनि है उनकी इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रख सकता, इसीलिए मैं मेरा जो प्रतिनिधि है उनको भेजूंगा। जैसे दशम स्कंद के 47 अध्याय 47वें अध्याय में भगवान खुद वृंदावन जा नहीं सकते, इसलिए गोपियों को सांत्वना देने के लिए वे उद्धव जी को भेजते। 46 और 47 अध्याय में उद्धव के संदेश वाहक बन जाते। तो भगवान के बहुत अंतरंग पार्षद है उद्धव जी, कि जहां पे भगवान नहीं जा सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में वो भेज रहे हैं। और प्रतिनिधि के रूप में किसके लिए भेज रहे, कोई राजनैतिक कार्य के लिए नहीं भेज रहे, वो अपने अंतरंग भक्त से मिलना है, उनको सांत्वना देनी है, उसके लिए जा रहे हैं। तो उद्धव जी जानते हैं कि भगवान अभी मुझे उनसे दूर जाने को बोलेंगे, और फिर वो जानते हैं कि इससे शायद मेरे भक्ति में क्षय हो सकता है, पर फिर भी वो ये स्वीकार करते हैं कि भगवान जानते हैं कि मेरे भक्ति की वृद्धि कैसे होगी। इसलिए वो कहते हैं, भगवान मुझे ऐसा उपदेश दो, ऐसे मेरे जीवन को नियोजित करो आप, जिससे कि मेरी आपके प्रति भक्ति बढ़ जाए। अनुशादिमाम। तो जो इसी के 23वें अध्याय में भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं, और वहां पे अपनी माया है किस तरह से सारी जीवात्माओं को बंधन में फंसाती है उसका वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि वास्तव में जब मेरी कृपा होगी तभी आप माया के परे जा सकते हैं। माया सबको फंसाती है, किस तरह से फंसाती है कि जो तुच्छ सुख है, वो 21वें अध्याय में भगवान बहुत जो भौतिक सुख की विडंबना बताते हैं, कि शुद्र सुख उर्तर्षम, जो सुख है क्षुद्र है, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा सा सुख है, पर तर्षम, तर्षम मतलब उसकी तृष्णा है, उरु है बहुत विशाल तृष्णा है, बहुत विशाल तृष्णा है। वास्तव में हम देखते हैं भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग सालों सालों तक कल्पना करते रहते हैं, सालों साल तक, जैसे जवानी आ जाती तब से कल्पना करते रहते, कल्पना करते रहते, चाहे वो काम वासना का सुख हो, लोभ का सुख हो, सालों सालों तक उरु तर्षा, बहुत उसकी तृष्णा करते रहते हैं। पर जो सुख होता है वास्तव में क्षुद्र सुख, कुछ क्षणों के लिए सुख रहता है फिर खत्म हो जाता है। पर यह जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा भगवान को अर्पण करेगा इतना बड़ा प्राप्त कर लेते हैं, पर हम माया देवी को इतना अर्पण करते हैं, इतनी इच्छा, इतना विचार, इतना प्रयत्न अर्पण करते हैं पूर्व दर्शन पर, माया कह देती है क्षुद्र सुख, थोड़ा सा सुख प्रदान करती है। पर यह क्यों होता है, यह माया की शक्ति है, जनमोहिनी, वैष्णवी जनमोहिनी, वो सबको फंसा देती है। तो ये माया के चंगुल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए केवल भगवान की कृपा चाहिए। तो चक्रवर्ती पाद जो ईश्वर कृष्ण सांख्यकारी का जिन्होंने लिखे है, वो उनका एक उदाहरण बताते हैं कैसे जीवात्मा माया के चंगुल से निकल सकता है। ताकि कोई अगर कोई नाट्य ग्रह में आए हैं लोग, और वहां पे कोई नृत्य करने वाली स्त्री है, नाटिका है, वो नृत्य कर रही है, तो सब लोग उत्साह से देख रहे हैं कैसे नृत्य कर रही है। पर ये नृत्य करने वाली नाटिका है, वो ज्यादा कुछ नृत्य के बारे में जानते नहीं है, सिर्फ एक ही प्रकार का नृत्य जानती है। तो एक प्रकार का नृत्य कर लिया और खत्म हो गया, फिर सारे जो उपस्थित प्रेक्षक है उनकी रुचि चली जाती है, ठीक है, उसको और कोई नृत्य आता नहीं है, क्या देखना है। और पर यह जो नाटिका है, ये नाटक करने वाली है, वह चाहती नहीं है, या अभिनेत्री जो है, अभिनेत्री चाहती नहीं है कि वो प्रेक्षक चले जाए। तो इसलिए क्या करती है, जैसे ही वो देखती है कि ये प्रेक्षक कुछ अभी उनका ध्यान दूर जा रहा है, वो उठ के जाने का सोच रहे, तो अलग अपना हाथ पैर नया हिलाने लगती है कुछ, और सब प्रेक्षक बोलते अभी कुछ नया नाटक करने, नया नृत्य करने वाली है, तो सब देखने लगते हैं। पर बाद में देखते हैं, अरे उसको कुछ नया नाटक आता ही नहीं है, वापस वही नृत्य कर रही है, तो वापस रुचि चली जाती है। पर वापस वो कुछ हाथ पैर नया हिला लेती है, कुछ मुंह हिलाती है, कुछ आंख हिलाती है, और वापस सब देखने लगते हैं। तो बोलते हैं कि इस तरह से माया कुछ नया सुख नहीं दे सकती है, सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा माया कुछ दे नहीं सकती है। पर अगर सिर्फ इतना ही सुख देने वाली है वो, तो जीवात्मा सब जीव, सब लोगों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब अनुभव कर लिया है, तो माया को त्याग देंगे। पर क्या है, माया चाहती नहीं है कि ये जीवात्मा इतने आसानी से भगवान की भक्ति में लग जाए। क्यों नहीं चाहती है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा डज नॉट वॉन्ट डिस्टर्बेंस इन हिज लीला, कि भगवान अपनी लीला में व्यत्यय नहीं चाहते, तो जो सही में उनके भक्ति करना चाहते उनको ही भगवान अपनी लीला में प्रवेश देना चाहते हैं। तो इसीलिए माया देखते कि सही में ये व्यक्ति मुझसे उसकी रुचि उठ गई है या अभी तक थोड़ी कुछ आशा है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा और कोई सुख है नहीं। पर वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन हमेशा माया नए नए रूप में प्रदान करती है। इसे ये अभिनेत्री नया नया नृत्य करने का नाटक करती है, उसको नया नृत्य कुछ आता नहीं है पर नाटक करती है। ठीक उसी तरह से माया आहार, निद्रा, भय, मैथुन उसको नए नए रूप में प्रदान करती है, नया हेयर स्टाइल, नया ड्रेस स्टाइल, नया कार स्टाइल, अभी तो नया डेथ स्टाइल हो गया है। डेथ स्टाइल मतलब क्या, लोग अभी भारतीय संस्कृति में तो कम से कम लोग जब उनकी मृत्यु हो जाती तो शरीर को जला देते हैं, पर पाश्चात्य संस्कृति में, क्रिश्चियन इस्लाम में वो क्या करते हैं, वो शरीर को एक कॉफिन, एक बक्से में बंद करके उसको जमीन में खोद देते। तो आपकी मृत्यु के पहले आपको किस प्रकार के डब्बे में दफनाना है उसका डिजाइन आप कर सकते हैं। तो लोग डेथ स्टाइल, मैं लाइफ स्टाइल में जीऊंगा और स्टाइल में मरूंगा भी, पर मरने के बाद जब यमरोज लाओगे तो वहां पर कोई स्टाइल नहीं रहेगा। पर यह माया का इतना प्रलोभन है कि लोग ये सोचते नहीं कि मेरे मृत्यु के बारे में क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो सोचते कि मेरी जो दफनाने का दबक्सा है वो कैसा होगा, लोग देखने को आए कैसे देखेगा, तो कैसे दिखेगा, वास्तव में जमीन के अंदर होगा, कोई देखने वाला नहीं है खोद के। पर फिर भी ये बहुत, ये मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है अमेरिका में कि आपका आपका जो कब्र है किस तरह से उसका डिजाइनिंग करना। तो माया इस तरह से कुछ नया नहीं दे सकती है, पर वही पुराना जो है नए नए रूप में प्रदान करती है और जीवात्मा है मोहित हो जाता है। तो वो बताते हैं कि जीवात्मा को आंखें बंद करके समझ लेना चाहिए कि ये अभिनेत्री है, इसको और कोई नृत्य आता नहीं है। इसे वो जो अप्रेक्षक है, जब वो अगर देखते रहेंगे तो उनको अभी कोई नया नृत्य करने वाली है, अभी कोई नया नृत्य करने वाली है, अभी कोई नया नृत्य करने वाली है। पर इतने समय से वो शो देख रहे हैं और अभी तक कोई नया नृत्य किया नहीं है, वही नृत्य बार बार कर रही है। तो फिर आंखें बंद करके समझ लेना कि इसको नया नृत्य कोई आता नहीं है, हमें चले जाओ। ठीक उसी तरह से जो भौतिक जगत में माया आहार निद्रा भय मैथुन सब नए नए पद्धति से प्रदान करती है, पर वो उसमें नया कुछ है नहीं। पुनः पुनः चर्म तचर्म नाना, भाई पुरानी चीज है पर सिर्फ नया दिखावा है। तो जब जीवात्मा समझ जाता है तो फिर वो अनासक्त हो जाता है। तो ये बौद्धिक स्तर पर हम समझ सकते हैं, पर जब माया प्रलोभन देती है तो क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माया में एकम शरणम व्रज। तो हम माया की शरण में चले जाते हैं। तो उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए कि हम बौद्धिक स्तर पे माया को समझ सकते हैं कि माया कैसे फंसाती है जीवात्मा को, पर जब प्रलोभन आते हैं उस समय वो बुद्धि मिलना बड़ा मुश्किल है। और वो जो बुद्धि है वह भगवान की कृपा से आती है। और वही उपदेश उद्धव जी चाह रहे हैं कि अनुशाधिमाम, हे प्रभु मुझे आप ऐसा उपदेश दो जिससे कि मैं आपकी, मेरी आपकी ओर रति वृद्धि हो उसकी। तो ये रुचि की वृद्धि कैसे होगी, वास्तव में ऐसे कोई नहीं है कि हमारे गुरुदेव आके उनके हमारे सिर पर उनका हाथ रख देंगे और उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी और फिर हमारी भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी। अगर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है अच्छा है, पर वास्तव में जो वृद्धि जो बढ़नी है वो हमारे हमारे खुद के चॉइसेस, हमारे खुद के चुनाव से बढ़ेगी। मतलब जब हमें भगवान की सेवा का मौका है, माया की सेवा का मौका है, तो उसमें अगर हम भगवान की सेवा को हम चुनते हैं तो फिर उससे हम भगवान के करीब जाते हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं कि रूप गोस्वामी शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं। तो ये 6 लक्षण जो बताते हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं कि ये भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम रज, मैं शरण में आ जाऊं, तो फिर शरण में आने का मतलब क्या है। कोई विद्यार्थी बोलेगा मैं मेरी पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं शरण में जाता हूं भगवान की। कोई गृहिणी बोलेगी मैं अभी कुकिंग नहीं करूं, मैं भगवान की शरण जाती। कोई गृहस्थ बोलेगी कि मैं अभी नौकरी में नहीं जाऊंगा, मैं भगवान की शरण जा रहा हूं। नहीं, ये शरण जाने का की विधि क्या है, शरण जाने की विधि, उसमें भगवान 6 चीजें बोलते हैं। उसमें रूप गोस्वामी 6 चीजें बताते हैं, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन, रक्षिष्यति विश्वास गोपतृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। की जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना, प्रतिकूल जो है उसको इनकार करना, और फिर भगवान कहते हैं सदैव यह विचार करना कि मैं भगवान के बिना असह्य हूं, भगवान ही मेरे रक्षण करता है, भगवान ही मेरे पालन करता है, और नम्रता बनाए रखना। तो ये 6 जो चीजें हैं, इनमें जो पहले 2 है वो कार्य है और अगले 4 जो है वो भाव है। पहले 2 है अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, यह जो है यह कि हमें चुनाव करना है, जब हमारा हम जप कर रहे हैं तो मन इधर भटकता है, तो अनुकूल क्या है पुनः मन को वापस जप में लाना, प्रतिकूल क्या है इधर उधर देखते रहना। तो यह सब हमारे हमारे कार्य है जिससे हम जो अनुकूल है भक्ति के लिए चुनाव कर सकते, जो प्रतिकूल है उसको ठुकरा सकते। और बाकी सब जो है कि ये भाव रखना कि भगवान मेरे रक्षण करता है, भगवान मेरे पालन करता है, यह भाव हम सिर्फ मानसिक स्तर पर उसका चिंतन नहीं कर सकते। जब हमारे भक्ति की प्रगति होगी तो वो भाव हमारे हृदय में स्फुट हो जाएगी। तो उसके लिए प्रधान रूप से अगर हमें शरण जाना है ये दो चीजें हैं, जो भगवान के भक्ति के प्रति अनुकूल है उसको स्वीकार करें, जो भगवान के प्रति के भक्ति के प्रति प्रतिकूल है उसको इनकार करें। और जिस तरह से देश काल पात्र के अनुसार भगवान अलग अलग प्रकार का उपदेश देते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, जो उपदेश का सार था वह एक ही है पर जो उसका रूप है वो अलग है। जैसे भगवान चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं अर्जुन को, इमं विवत्स्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम्। ये उपदेश मैंने पहले विवस्वान सूर्यदेव को दिया है, तो जब भगवान ने उपदेश सूर्यदेव को दिया तो भगवान ने ये श्लोक बताया नहीं, इमं विवत्स्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम्, क्योंकि वो सूर्यदेव को ही बोले, वो सूर्यदेव को नहीं बताया कि मैंने पहले सूर्यदेव को यह उपदेश दिया था। तो जो सार होता है वो एक होता है पर जो भगवान का उपदेश होता है उसका रूप अलग अलग होता है। और रूप अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार वो उपदेश भगवान देते हैं। तो जो प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी ने भगवद्गीता यथारूप लिखी है और अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, वो हमारी आधुनिक समाज है उसमें भगवान का संदेश किस तरह से हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं उसका वर्णन करते हैं। जिस तरह से भगवान ने भगवद्गीता बताई, उद्धवगीता बताई, उसी तरह से भगवान ने ही प्रभुपाद जी के हृदय से उनको प्रेरणा लेकर भगवद्गीता यथारूप बताया। तो प्रभुपाद जी जब अपने ग्रंथ लिखते थे तो प्रभुपाद जी यह हमें बड़े दिव्य चिंतन विचार भी चल जाते थे, और भगवान की कृपा से भगवान से जो संदेश मिला था वही अपने वचनों में वो लिखते थे। तो वही संदेश जो है, सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम व्रज, एष बुद्धिमतामेष मनीष मनीष नाम, वो जो उपदेश है वह प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में दिया है। और प्रभुपाद जी ने न केवल अपने ग्रंथों में संदेश दिया है पर प्रभुपाद जी ने हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संस्था दी है, जिससे कि हम उस संदेश को हमारे जीवन में उतार सकते हैं। प्रायोगिक रूप से हम ऐसे कार्य कर सकते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि हम भगवान की भक्ति में वृद्धि कर सकें। तो जब प्रभुपाद जी ने अपना आंदोलन शुरू किया भारत में, सबसे पहले भारत में विचार कर रहे थे, और प्रभुपाद जी ने पहले अपनी भगवत दर्शन जो बैक टू गॉड मैगजीन है वो भारत में शुरू चालू की, और उस समय वास्तव में भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, और न केवल भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था पर साथ साथ विश्व में दूसरा महायुद्ध था वह चल रहा था। तो उस समय लोगों को आध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि सरकार भी पैसा नहीं दे रहा था कि आप पेपर कोई आध्यात्मिक मासिका छापा करने के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि जो कागज था वो भी ज़्यादा मौजूद नहीं था। पर फिर भी प्रभुपाद जी बहुत प्रयास करके भगवत दर्शन छापते थे, खुद जाके वितरित करते थे। और प्रभुपाद जी जब बड़ा मेहनत से ये ग्रंथ छापते थे, पहले प्रभुपाद जी ने भगवत दर्शन छापा, फिर उन्होंने अपने भागवतम लिखे। जब प्रभुपाद जी लिखते थे तो प्रभुपाद जी चिंतन करते थे कि मैं प्रभुपाद जी के अगर आप सबके पत्र पढ़ेंगे खत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी सोचते हैं कि मैं ये भगवत दर्शन छापूंगा तो 1000 कॉपी मैं इंग्लैंड भेजूंगा, 500 कॉपी फ्रांस को भेजूंगा, 1000 कॉपी अमेरिका को भेजूंगा, 300 कॉपी कनाडा को भेजूंगा, 500 कॉपी जापान को भेजूंगा। वास्तव में प्रभुपाद जी का इतना पैसा भी नहीं था कि वो 500 कॉपी टोटल छाप सके, पर ये भक्त का हमेशा भाव होता है कि भगवान की सेवा विस्तारित रूप से करते, विशाल रूप से करते। और इस तरह से प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए उन्होंने अपने जो भागवत के ग्रंथ थे तो साथ में लिखे थे 1962, 1963 और 1964, 3 साल में प्रभुपाद जी ने 3 वॉल्यूम, पहले श्रीमद भागवतम का पहला स्तंभ 3 वॉल्यूम में आया था, 3 छापे, और फिर 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाने के बाद प्रभुपाद जी जब कुछ भक्तों के साथ, नए नए भक्त सेवक के साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संस्था की स्थापना की, तो 1967 में उन्होंने तभी हयग्रीव प्रभु, रायराम प्रभु, सत्स्वरूप प्रभु, देवस्वरूप मारक, वो सबको एक बार मीटिंग के लिए बुलाया और बोले कि अभी मैं आपको आई वॉन्ट टू गिव यू बैक टू गॉड, मैं आपको बैक टू गॉड ले जाता हूँ। तो भक्त समझे नहीं, बैक टू गॉड में सुनकर प्रभुपाद जी हमको भगवत धाम ले जाना चाहते हैं, भगवत धाम हमें लेना चाहते, बड़े आश्चर्य के भगवत धाम कैसे ले गए प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बोले कि बैक टू गॉड ले मानसिकता में चला रहा। तो फिर हैगिरी प्रभु इस तक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं अपने, उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, हरे कृष्ण विस्फोट, जो विस्फोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं हरे कृष्ण आंदोलन इतना तेज से वो पहले 4-5 सालों में प्रसार हुआ कि उनको विस्फोट के समान का हुआ। और फिर प्रभु जी सब भक्तों को बुलाया और अलग अलग भक्तों को बोला कि आप सब उसमें देख लो। तो तभी सब भक्तों ने उनके पास कुछ पैसे साइक्लो स्टाइल करके वो जाके बांटते थे और डॉक्टर वाले एक पेज पाते थे। और जब भक्त जाके बांटते थे तो प्रभुपाद जी रोज आके पूछते कितने भक्त डॉक्टर वाले बांटे। और जब बांटा बहुत अच्छा। और फिर प्रभुपाद जी एक भक्त बोले प्रभुपाद जी अभी इन्होंने खत लिखा है, इन्होंने लेख लिखा है, इन्होंने लेख लिखा है। तो प्रभुपाद जी थोड़े मनोरंजन के रूप से देख के सुन रहे थे। तो बाद में प्रभुपाद जी बोले वास्तव में बैक टू वर्ल्ड के सब लेख मैंने ही लिखे, ऑल द आर्टिकल्स आर रिटन बाय मी ओनली, सब लेख मैंने ही लिखे। क्या मतलब? क्योंकि वो जो भक्त थे वो जो कुछ भी लिख रहे थे वो सब उन्होंने कहा सुना था? प्रभुपाद जी के मुख कमलों से सुना था, प्रभुपाद जी सुना था वही दोहरा रहे थे। प्रभुपाद जी सभी को खुद लिखने को बोल रहे थे कई कारण थे। एक तो था कि उनको सेवा दे रहे थे वो, उनको उनकी जो बुद्धि है जो भगवान का संदेश समझने के लिए लिखने के लिए मौका दे रहे थे। साथ साथ वो जानते थे कि ये भक्त पाश्चात्य संस्कृति में उनका जन्म हुआ है तो पाश्चात्य लोग की विचारधारा है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो उसके अनुसार वो उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी जब उन्होंने बीबीटी की स्थापना की भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट जो है पहले इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई, 1969 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन प्रेस स्थापन किया। इस्कॉन प्रेस मतलब अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस था जिससे कि ग्रंथों को छापे और उसका वितरण हो सके। और फिर तभी उन्होंने बैक टू वर्ल्ड का भी स्थापना की। तो पहले बॉस्टन में था फिर वो लॉस एंजल्स में शिफ्ट हो गया और फिर उसका नाम हो गया भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। और फिर प्रभुपाद जी उनके जो शिष्य थे छोटे छोटे शिष्य थे जो 1-2 साल पुराने थे और वो जब लेख लिखते थे प्रभुपाद जी खुद सब बैक टू वर्ल्ड पढ़ते थे, लेख पढ़ते थे। और फिर जो जो भक्त ने लिखा है वो भक्त प्रभुपाद जी भारत में हो वो बैक टू वर्ल्ड का लेख पढ़ा होगा, अमेरिका में जाएंगे उस भक्त से मिलेंगे ये आई रेड योर आर्टिकल, मैंने आपका लेख पढ़ा बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को बहुत प्रोत्साहन कर दिया। और फिर जब तमाल कृष्ण महाराज ने जब राज दामोदर बस पार्टी की स्थापना की तो तभी वे उन्होंने बैक टू गॉडहेड जो था उसका वितरण का बहुत जिम्मेदारी ली। तो एक महीने में एक बार उन्होंने 10 मिलियन बैक टू गॉडहेड डिस्ट्रीब्यूट की। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ बैक टू गॉडहेड उन्होंने एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया। और प्रभुपाद जी को सुना, प्रभुपाद जी बोले डबल इट, उसको आप डबल कर दो। तो प्रभुपाद जी की जो दृष्टि थी इतनी विशाल थी। भक्तों ने अमेरिका का एक देश है वेस्ट वर्जीनिया, एक प्रांत है और वेस्ट वर्जीनिया में एक जगह पे जो अभी न्यू वृंदावन जो बना है वहां पे थोड़ी सी जगह खरीदी और फिर थोड़े एक साल के बाद और थोड़ी बड़ी जगह खरीदी। तो फिर जब उन्होंने एक खत लिखा प्रभुपाद जी को कि मैंने इतनी बड़ी हमें थोड़ी और बड़ी जगह खरीद ली, तो जी बोले वेरी गुड, अच्छा किया। तो ऐसे करके आप और बड़ी बड़ी जगह खरीदते जाओ और एक दिन आप पूरे अमेरिका खरीद लो और फिर सारे अमेरिका में मंदिर बना के सबको भक्त बना दो। तो हैगरू को लिखते हैं कि अंदर कि हमें इतनी सी छोटी जगह है हमारे पास, वो सारा अमेरिका कैसे खरीद सकते। बोले है कि पर यह तो नामुमकिन नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो किया था वो पहले से नामुमकिन था। कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में अकेला जाकर बिना कुछ पैसे दिए वह कोई जलसा प्राप्त करता है, यह नामुमकिन है। तो प्रभुपाद जी खुद चालू कर दिया। तो सूत्र महाराज प्रभुपाद जी की वजह से वो लिखते हैं कि प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट मिशन इम्पॉसिबल, इट इज मिशन अनस्टॉपेबल। बोलते हैं कि जो कृष्ण भावना का प्रचार है वह नामुमकिन लगेगा किसी को, पर नामुमकिन नहीं है इसको प्रचार करना, नामुमकिन नहीं है इस प्रचार को रोकना, नामुमकिन है क्योंकि यह भगवान की इच्छा है। जैसे भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था अर्जुन को, तस्मात् तमुत्तिष्ठेषु लभस्व, भगवान को अर्जुन ने दिखाया कि तुम्हारे सारे शत्रु जो है भीष्म च द्रोणं च जयद्रथं च, भीष्म द्रोण ये सब शत्रु जो है वह सब ये विश्वरूप के मुंह में जाकर उनका नाश हो रहा है और तुम्हारे विजय निश्चित है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कौरव पक्ष में योद्धा थे उनमें कोई जयद्रथ कोई बड़ा महारथी नहीं था, भीष्म द्रोण जो महारथ थे भीष्म द्रोण कर्ण अश्वत्थामा कृपा ये सब थे, जयद्रथ नहीं थे। पर भगवान सर्वज्ञाता है, उनको पहले से पता है कि जयद्रथ को मारना अर्जुन के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है 13वें दिन जब युद्ध होगा। तो इसीलिए भगवान पहले ही भगवद गीता में अर्जुन को आश्वासन देते कि भीष्म से द्रोणम से जयद्रथम से जयद्रथ का वध होने वाला है। तो इस तरह से भगवान की जो इच्छा है वह सब भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब जो भी उनकी इच्छा है जरूर पूरी होती है। ऐसे हम पहले बता रहे थे कहते हैं कि भगवान इस तरह से भक्त को उपदेश देते हैं जिससे कि उस भक्त की वृद्धि हो भक्ति। तो ठीक उस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाओं का आंदोलन है उसका भी प्रचार प्रभुपाद जी ने इस तरह से किया कि हर एक भक्त को अलग अलग प्रकार की सेवा मिले जिससे कि वो सेवा के माध्यम से वह अपनी भक्ति में वृद्धि कर सके और दूसरों के जीवन में भक्ति प्रदान कर सके। तो ये देवी प्रभुपाद जी के द्वारा अपने ग्रंथ लिखते थे साथ साथ में भगवत दर्शन भी छापते थे और उन्होंने अगर आप इसको उनके सात उद्देश्य जो है और उसको पढ़ते हैं तो सातवां उद्देश्य जो है कि ग्रंथ और मासिक लिखना जिससे कि जो पहले छह उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सके। तो पहले छह उद्देश्य क्या है मंदिर बांधना भक्तों को ट्रेनिंग देना फिर प्रचार करना सब में कृष्ण भावना जागृत करना हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना ये सब उद्देश्य बताया पर उसके बाद में क्या बताया ये सब करने के लिए ग्रंथों का प्रचार करना। तो प्रभुपाद जी की जो इच्छा प्रभुपाद जी कहा थे कि जो भगवत दर्शन है ये इस्कॉन का बैकबोन है। बैकबोन मतलब जो पीठ की हड्डी होती है व्यक्ति का पीठ की हड्डी वो अगर उसकी खराब हो गई तो फिर कुछ भी काम करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो बैकबोन ऑफ इस्कॉन क्यों इतना महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी के ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह शास्त्रों पे भाष्य है। पर जैसे कलयुग बढ़ रहा है लोग अधिक अधिक भौतिकवादी हो जाते हैं और जब अधिक अधिक भौतिकवादी हो जाते हैं तो फिर वे जो आध्यात्म है उसकी और रुचि उनकी कम हो जाती है और वे देखना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। जैसे अगर हम जो माधव संप्रदाय में जय तीर्थ है या अक्षोभ्य तीर्थ है उनकी अगर हम भाष्य पढ़ेंगे तो वो भाष्य वो क्या लिखा है क्यों लिखा है समझ में ही नहीं आएगा। हम क्यों समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं कि संस्कृत बहुत कठिन है संस्कृत कठिन है पर क्यों इतना मुश्किल जाता है समझना क्योंकि उस समय जो अज्ञान के अलग अलग रूप थे वो अज्ञान के रूप को खंडन करने के लिए उन्होंने भाष्य लिखे हुए हैं। तो ठीक उस तरह से परंपरा का जो आदर्श क्या है परंपरा की प्रथा क्या है कि इस भौतिक जगत में हमेशा अलग अलग प्रकार से अज्ञान रहेगा और जिस भी प्रकार से अज्ञान है उस अज्ञान का खंडन करना ये वैष्णव भक्तों और वैष्णवाचार्यों का जिम्मेदारी है। तो प्रभुपाद अगर हम कृष्ण के भगवान कृष्ण की भगवदगीता में देखेंगे तो वहां पर डार्विन के उत्क्रांतिवादों का खंडन नहीं है तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में इसका बहुत खंडन करते हैं। क्यों क्योंकि जो आधुनिक समाज में जो समस्याएं हैं जो भगवान से दूर ले जाने वाली धारणाएं हैं उनका खंडन करना ये आचार्य की जिम्मेदारी है। इस तरह से प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो ये भगवत दर्शन है वह जो कंटेम्प्ररी इश्यूज है जो उस समय के जो समस्याएं हैं जो मामले हैं उसका उससे एक वैदिक दृष्टिकोण डाले और उसका वैदिक शास्त्रों के आधार कैसे निवारण कर सकते हैं इसके बारे में वर्णन करें। तो आप तो सोच रहे हो कि मैं भगवत दर्शन के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ तो कई कारण है। तो सबसे पहले कि भगवत दर्शन जो मासिक है उसके लिए सेवा में मेरा भी भूमिका है मैं उसको लेख लिखता हूँ उसका एक संपादक हूँ मैं एक संपादक हूँ। तो जब प्रभुपाद जी उस भौतिक जगत में थे अभी भी है वे पर हमारे दृष्टिगोचर नहीं है तो प्रभुपाद जी जब उनके 1970 तक वो भगवत दर्शन के प्रचार पर बहुत जोर दे रहे थे हमेशा और फिर उसके बाद में जब प्रभुपाद जी बहुत ही छोटे चले गए भगवत धाम तो उसके बाद में जो भगवत दर्शन से जो जोर था वो कम हो गया। उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय भगवत दर्शन है बहुत तो अमेरिका में चल रहा था और भारत में आता था तो भारत में इसके लिए बहुत 100 रुपये का मैगजीन बहुत एक्सपेंसिव था। तो परमजी जयदेव महाराज जो थे वो भगवत दर्शन के संपादक थे कहीं अनेक सालों तक तो उनकी इच्छा थी कि इस्कॉन भारत में इतने सारे मंदिर है इतने सारे भक्त हैं तो भारत के लिए एक सेपरेट मैगजीन होना चाहिए और सेपरेट इंग्लिश मैगजीन होना चाहिए और हर एक भाषा में भी मैगजीन होना चाहिए। तो फिर तो वो गोपाल कृष्ण महाराज, रामनाथ महाराज, उन सबसे मिले और फिर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि अरे आप सब आपका आपके जो शिष्य है भारत में है तो आप ये मैगजीन चालू कीजिए। तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज बोले कि अगर हिंदी में आप मैगजीन चालू करेंगे तो हाँ मैं दिल्ली में विशाल मात्रा में हम वितरण करेंगे। तो फिर जब राघवनाथ महाराज ने उदय मान लिया कि हाँ हम जब राघव गोपीनाथ मंदिर में शिष्य है भक्त है उनको बताया कि आप चालू कीजिए, तो उन्होंने इंग्लिश हिंदी मराठी ये तीन भाषाओं में चालू किया और जैसे ये लगभग 7-8 साल तक चालू हुआ और तब से जो भगवत दर्शन है वो क्वालिटी उसकी क्वान्टिटी विस्तारित होते जा रही है। फिर गुजराती में भगवत दर्शन चालू हो गया, साउथ इंडिया में तेलुगु में भी हो गया, वेस्ट बंगाली में भी हो गया और जो पिछला साल था पिछले एक साल में भक्तों ने 1 मिलियन कॉपीज ऑफ बैक टू बॉडी डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो सब भाषाओं में मिला के आपको तभी 1 महीने में 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उसकी तुलना में बहुत कम है पर फिर भी बहुत विशाल है। कुछ साल पहले बैक टू बॉडी मैगजीन था ही नहीं और एक साल या अभी कुछ 8-7 सालों में 10 लाख की मात्रा में वितरित हो गए। तो इस बार जो बैक टू बॉडी के एडिटर्स है उन सब वो सब ने जो इस्कॉन की कॉन्टिन्यू इस्कॉन के सारे अध्यक्ष जो है गुरु और जीबीसी उन सबकी मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि हमें जो बैक टू वर्ल्ड है इसका वितरण से जोर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कलयुग बढ़ रहा है, लोगों को हम ग्रंथ देते हैं, लोग ग्रंथ लेते हैं पर अधिकांश रूप से ग्रंथ पढ़ते नहीं है, भगवान का यथारूप लेते हैं यथारूप कर देते हैं। तो पर अगर हम उनको कुछ मासिक देते हैं तो मासिक ये कभी ग्रंथों का सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ग्रंथ की जगह नहीं लेते पर वो ग्रंथों के वो लोगों को आकर्षित करते हैं क्योंकि मासिक में बड़े बड़े पिक्चर होते हैं जो आजकल के जो विषय है उन पर जो चर्चा होती है और अलग अलग विचार अलग अलग भक्तों के लेख होते हैं। तो किसी एक भक्त के लेख की और कोई भक्त आकर्षित हो जाएगा, फिर उससे तत्वज्ञान की ओर आकर्षित हो जाएगा, उससे फिर वो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने लगेगा, फिर भक्त बन जाएगा। इसलिए कि जो अलग अलग जो अलग अलग आध्यात्मिक संस्था है प्रभुपाद जी जब उनके कुछ अमेरिका में जब गए प्रभुपाद जी भारत में उनके लिए ग्रंथ छापना बड़ा आसान था, पहला ग्रंथ मुश्किल था पर जब पहला भागवत का वॉल्यूम छाप लिया उन्होंने उसके बाद दूसरा तीसरा छापना आसान था क्योंकि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का अप्रूवल जैसा मिल गया उनको कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो सारे लाइब्रेरी ले रहे थे। पर अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए तो उन्होंने ग्रंथ छापने का प्रयास नहीं किया, सबसे पहले क्या किया बैक्टी वर्ल्ड छापना चालू कर दिया, बैक्टी वर्ल्ड का वितरण किया। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि स्थायी रूप से अगर किसी को भक्ति में लाना है तो उसको ग्रंथ जरूरी है, पर पहले स्थायी रूप से किसी को भक्ति में रखना है तो उसको ग्रंथ पढ़ना जरूरी है, पर अगर किसी को पहले लाना है भक्ति में तो कई बार वो व्यक्ति ग्रंथ पढ़ेगा नहीं पर मासिक लेगा तो मासिक आसानी से पढ़ लेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी के कई खत है जो जयदत्त महाराज ने एक बैक टू वर्ल्ड हैंडबुक बनाया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं उस दिन की आकांक्षा करता हूँ कि जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े मैगजीन है टाइम लाइफ कभी भारत में इंडिया टुडे इलस्ट्रेटेड लिखे हैं कि इन सबसे ज्यादा हमारे बैक टू वर्ल्ड का वितरण। और प्रभुपाद जी भक्तों को बहुत प्रेरणा देते कि आप इसका वितरण करो। तो उस समय जो आईसीसी मीटिंग होती थी राधेश्याम प्रभु महीने थे, राधेश्याम प्रभु ने जब सुना कि 1 मिलियन कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए। फिर जो अलग अलग भक्तों से चर्चा हुई जो बैक टू वर्ल्ड के जो प्रोडक्शन एडिटिंग करने वाले स्टाफ है तो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव रखा कि जो बैक टू वर्ल्ड है इसका अगर हम प्रचार बढ़ा देंगे तो न केवल लोग क्योंकि हम ग्रंथ किसी को दे देते हैं, एक बार ग्रंथ दे दिया उससे जो संबंध है वहीं पर खत्म हो गया कि बाद में हम उससे कब मिलने वाले, पर बैक टू वर्ल्ड हर महीने आता है और अगर किसी को हम सब्सक्राइबर बनाते हैं तो एक हर महीने हम जाके मिल सकते हैं, तो इससे हम लोगों को से संबंध जोड़ सकते हैं, उनको भक्ति में और आसानी दिला सकते हैं। तो अभी प्रवचन के बाद सुंदर प्रभु उन्होंने ऐसे व्यावहारिक रूप से अनुभव किया है, एक्सपेरिमेंट किया है किस तरह से न केवल लोग बड़े आनंद से बैक टू वर्ल्ड लेते हैं पढ़ते हैं और बड़े आनंद से भक्ति में लग जाते हैं। तो यह तो राजेश्वर प्रभु ने विचार किया कि हम एक बैक टू गॉडहेड का मैराथन पूरे इस्कॉन में पहली बार पुणे में करेंगे और अगर इसका अच्छा प्रतिकार मिलता है तो अलग अलग जो मंदिर है वो भी बैक टू गॉडहेड का मैराथन कर सकते हैं। तो मैराथन का मतलब क्या है कि हम हमारी जो बाकी सेवा है चालू रखते हुए थोड़ा सा प्रयास करें कि जो जिनको हम जानते हैं उनको हम बैक्टिक ऑयल दे सकते हैं। तो ये जो है भगवान बताते हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय में और 18वें अध्याय दोनों में, पहले 13वें अध्याय बताते हैं कि इदं ज्ञानम उपाश्रित्य ममता धर्म आगता सर्वे नोपजायन्ते प्रयमेन विधन्ति च। बताते हैं कि इस ज्ञान का अगर कोई आश्रय ग्रहण करता है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, वो ज्ञान का आश्रय ग्रहण करता है, कहते हैं तो क्या होता है उससे, ममता धर्म आगता, वो शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव उसको प्राप्त कर लेता है। और वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है सिर्फ उसको समझने के लिए आश्रय ग्रहण करने के, और फिर वही ज्ञान का वर्णन 13वें अध्याय 16वें अध्याय 18वें अध्याय पुनः करते हैं, सॉरी 18वें अध्याय में, और वो बहुत सुंदर है। तो वो जो 8 श्लोकों की श्रृंखला है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करके मैं विराम दूंगा कि वहां पे भगवान 63वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन मेरा उद्देश्य भी खत्म हो गया, अभी तुम्हें जो करना है तुम करो। इति ते ज्ञानम आख्यातम दुया दुयतरम मया मैंने आपको उपदेश दे दिया है, गुह्य करो उपदेश दिया है, अभी आप विचार करो, विचार करो और फिर आप फैसला करो मैं क्या करना है, यथा अभी अर्जुन विचार में पड़ जाते हैं। भगवान तीसरे अध्याय में ये बताया, 7वें अध्याय में वो बताया, 11वें अध्याय में वो बताया, तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर सोच में पड़ जाते हैं। और जब आप इस तरह से बड़े गंभीर सोच में पड़ गए अर्जुन देखते हैं तो भगवान के हृदय की जो करुणा है वो बाहर आ जाती है प्रभाव के रूप में। भगवान आज ये सब चिंतन करने की जरूरत नहीं, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है।
सर्वगुह्यतम अम्भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽस्मि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
तो 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सब ज्ञानों में सबसे गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, सर्वगुह्यतम अम्भूय शृणु मे परमं वचः, सबसे श्रेष्ठ वचन जो है बता रहा हूं मैं। और क्यों बता रहा हूं, इष्टो उसमें रहती तुम मेरे बहुत प्रिय हो और तथो बक्षामि, मैं तुम्हारा हित चिंतक परम हित चिंतक हूं, तुम्हारा तुम मेरे बहुत प्रिय हो और मैं तुम्हारा हित चिंतक हूं, इसीलिए मैं तुम्हें उपदेश बता रहा हूं। और फिर भूमिया में पुनः तुम्हें उपदेश बता रहा हूं, ये पुनः क्या है, 9वें अध्याय के अंत में 34वें श्लोक में भगवान ने जो उपदेश बताया है वही श्लोक यहां पर बताते हैं, पर इस श्लोक में फर्क है और बहुत महत्वपूर्ण तरह है। भगवान बताते हैं 35वें श्लोक
मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवान नमस्तु मामे वही सत्यं ते प्रति जमाने प्रिय वसुले।
उसके जो पहला भाग है मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवान नमस्तु मामे वही, यहाँ पर 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और ये 18वें अध्याय का 35वां श्लोक एक ही है, पर अगला भाग अलग है, मामे वही युक्त एवं आत्मानां मत्परायणा मामे। तो यहाँ पे क्या है, मामे वही सत्यंते प्रतिजाने प्रियोजन, तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन समझे और कार्य करे। तो भगवान जब उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश कहता है कि वास्तव में करुणा से पूर्ण है, वो चाहते हैं कि भक्त समझे और उसको अपने जीवन में उतारे। माँ मैं वही सत्यंते, मैं सत्य बोल रहा हूँ, और क्यों सत्य बोलता, प्रतिजाने प्रियोजन, मैं प्रतिजाने मतलब मैं घोषणा करता हूँ। 9वें अध्याय में के 30वें श्लोक में बोलते हैं कौन ते प्रतिजानी है, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, पर भगवान यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ प्रतिजाने प्रिय हो, तुम्हें क्या घोषणा कर रहा हूँ कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे इष्ट हो। दुर्गमिति चक्रवर्ती पाल बताते हैं कि दुर्गमिति दृढ़ दृढ़ भगवान बताते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करने का दृढ़ संकल्प ले चुका हूँ, जीवात्मा है भगवान को भूलने का दृढ़ संकल्प ले चुका है। बट लिमिटेड इज डिटरमिन्ड टू फॉरगेट गॉड एंड गॉड इज डिटरमिन्ड टू लव द लिमिटेड, तो भगवान का दृढ़ संकल्प है और हमारा ये भाग्य है कि भगवान का दृढ़ संकल्प हमारे दृढ़ संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसीलिए भगवान जरूर हमारा उद्धार कर लेंगे। फिर ये इसीलिए तुम चार चीजें करो, मन मना भव मन भक्तो मन याजी मान, आप अपना मन मुझमें लगा लो और मन कैसे लगाओ, मेरे बारे में चिंतन करो, और किस प्रकार से चिंतन करो, ऐसे ज्ञानी के रूप में चिंतन नहीं करना है, भाव मत भक्त प्रेम से लगा चिंतन करो, और सिर्फ चिंतन मत करो व्यवहारिक कार्य भी करो, मत याजी मांग आप मेरी पूजा करो मुझे नमस्कार करो, ऐसे अर्जुन जरूर मेरे पास आ जाओ। फिर अर्जुन के मन में विचार आता है कि पर आपने तो इतने सारे उपदेश दिए हैं,
अलग अलग हमें धर्म बताए, हम सबका क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चैतन्य श्लोक बोले जो भी मैंने पहले बताया भूल जाओ और केवल आप मेरी शरण में, और जो भी कुछ पाप का डर लगता है, कोई पाप नहीं लगेगा, पर लग भी गया तो मैं संभालूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इस तरह से अपना जो हृदय है, वो हृदय का अंदर का खजाना भगवान बाहर दिखा देते हैं, फिर भगवान सहन जाते हैं। मैंने सबसे बड़ा गुरु बात है वो बता दी, जिसे अगले जब बोलते ये सबको बताना मत, केवल मेरे भक्तों को बता। केवल जा शुश्रूषवे वाच्य नच माम योग्य सूयति, कहते हैं कि इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, कि जो ये तपस्या नहीं करता है, जो श्रद्धावान नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, जो सेवा जिसमें सेवा भाव नहीं है, और जो ईर्ष्यालु नहीं है, ऐसे लोगों को तो मेरा उपदेश। तो सोच रहे हैं कि ऐसे लोग है कहाँ दुनिया में, और कहा इसी कैटेगरी में आ जाए तो भगवान फिर पुनः उनकी करना आ जाता है। तो जो मेरे संदेश का प्रचार करेगा उन्हें बहुत प्रिय हो जाएगा, जो अर्थत्व और अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय होंगे। भगवान कहते हैं यदम परम गुह्यम मद भक्ति शुभिधा, जो परम गुह संदेश है जो आप मुझे मेरे भक्तों को वर्णन करेंगे उससे क्या होगा, भक्ति मई पराम सुत्वा माँ में वैशिष्ट समझे, अगर आपको मेरी परा भक्ति मिल जाएगी आप जरूर मेरे पास आ जाओगे, और न केवल आप मेरे पास आ जाओगे, आपसे अधिक प्रिय और कोई नहीं बनेगा। कहते हैं कि तस्मान मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय प्रथमः भविता जन्मे तस्मान अन्य प्रियतरो भुवि। तो कि अगर कोई ऐसा प्रचार करेगा इतना मुझसे कोई प्रिय होगा ही नहीं, तो कभी कभी हम भावना के रूप में बोल देते हैं कि तुम्हारे मेरा और प्रिय कोई मित्र नहीं है, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता, पर बाद में कुछ मांग लेगा ये नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए,
हम बोल देते।
तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि मैं भावना की तरह बोल रहा हूँ कि तुमसे ज्यादा प्रिय और कोई नहीं होगा, भविष्य में भी और कोई प्रिय नहीं बनेगा। तो ऐसे जो बहुत करीब के घनिष्ठ भक्त है प्रभुपाद जी की, उनकी सेवा सारे विश्व भर में प्रचार करने अद्वितीय कार्य ने नहीं किया है, और फिर कोई बोले बाप ये प्रचार करेगा तो कुछ जमेगा नहीं, तो भगवान बोलते ठीक है प्रचार कर जमेगा, कम से कम तो तुम अध्ययन करो भगवान का। वो कहते हैं कि अदिश्यते च इमं धर्म्यं सर्वात्मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः, कि अगर आप प्रचार नहीं कर सकते आप सिर्फ अध्ययन करो भगवान का, अगर आप अध्ययन करोगे तो उससे आप मेरी पूजा कर रहे हो, हम सिर्फ आदिया दिखा के भगवान पूजा नहीं करते, वो जरूर पूजा कर सकते हैं, पर हम भगवान का नम्रता पूर्वक भक्तिपूर्वक अध्ययन करते हैं तो वो भी भगवान की पूजा है। तो और कोई बोले अध्ययन भी जलता नहीं, पढ़ाई कर बैठ गया तो सो जाता, कोई बात नहीं आपसे श्रवण करो, आप श्रवण करोगे तो क्या होगा, श्रवण करने से भी आपको पुण्य प्राप्त, पुण्य कर्मणा कि आपको जो ध्रुव लोक है चक्रवर्ती वाले ध्रुव लोक में भौतिक जगत में नहीं है, क्योंकि विष्णु स्वयं वहां पे, वहां पे आप वैकुंठ की प्राप्ति कर लोगे। और फिर अर्जुन ऐसा सुन के इतने भावुक हो जाते हैं, वो कहते हैं करिष्ये वचनं, हे प्रभु आप जो भी बताएंगे मैं करूंगा। तो ये भगवान का करुणा में संदेश है, वह जो श्रवण करता है, अध्ययन करता है, प्रचार करता है, वह भगवान के हृदय को जीत देता है, और यह मौका हम सबको मिलता है अगर हम प्रचार करते हैं या हम भगवत दर्शन को बांटते हैं, कुछ लोगों को लेते हैं, खुद पढ़ते हैं। तो जो वैष्णव आचार्य है, वैष्णव भक्त है, वो हमेशा अलग अलग प्रकार के योजना बनाते हैं जिससे कि भक्त गतिर्मा अनपायिनी, कि हमारी जो भगवान की भक्ति है उसकी वृद्धि कैसे हो सके, तो नए नए प्रकार से वो योजना करके बताते हैं, और इससे इस प्रकार से न केवल प्रचार बढ़ता है पर हमारे जीवन में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, हमारी भक्ति की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में आनंद बढ़ता है, वह हम सब अनुभव कर सकते हैं अगर हम सहभागी करते हैं। और सारांश में समय देखे थे संदर्भों को, आपके कुछ सारांश में यहाँ चर्चा की, कहते हैं कि भगवान उद्धव गीता में बता रहे हैं कि जो क्षणभंगुर जीवन है उसको अगर कोई भगवान की चरण में अर्पण कर देता है, उसे शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेता है, वह सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है। फिर हम उद्धव में चर्चा की, कहते हैं कि अलग अलग मार्ग है और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति मार्ग है, और भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए जो माया का माया के मोह है उससे भक्ति उससे निकलना है तो हमें भगवान की कृपा चाहिए, जिससे कि हम समझ जाएंगे जो अभिनेत्री है तो कोई नया नृत्य नहीं आता है, माया के पास कोई नया और भोग नहीं है, वह हमें भगवान की कृपा से हम समझ में आ जाता है। अरे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की सेवा बहुत जरूरी है, तो आचार्य अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा विस्तारित करते हैं और जो अलग अलग प्रकार के अज्ञान है उसका खंडन करते हैं। तो संबंध में ऐसे प्रभुपाद जी स्वयं भारत में प्रदेश में सारे विश्व भर भगवत ग्रहण भगवत दर्शन के पब्लिशिंग के छापने और प्रचार के लिए बहुत प्रयास किया, और कहते हैं कि कुछ ही सालों में थोड़ा प्रयास करने के सारे भारत भर में लाखों की संख्या में ये ग्रंथ वितरित हो रहा है, और अभी हमें भी मौका है कि जो भगवान के हृदय जो भाव है उनका हृदय कक्षा है उस हृदय के भाव को हम हमारे हृदय में लाते हैं, हम भी उसका अनुशीलन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय।
पिताय गौर हरे कृष्ण। सभी भक्तों को नम्र निवेदन है उसका बैठे रहे, क्योंकि हमारे में आज हमारे बीच में आज एक स्पेशल अतिथि आए हैं, विशेष अतिथि हमारे बीच में आज आए हैं, तो उनके बारे में जरा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। आप सभी भक्तों को पता है कि पूना जिले में 13 सालों का प्रदेश है, जैसे कि सापर है, दौंड है, ऐसे अलग अलग जगह है। तो सापर में पिछले साल सभी भक्तों को पता है कि 7 दिन का वहां